الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم الحمد للہ دوسری طاق رات میں داخل ہو چکے ہیں. یہ رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. کیا معنی ہوتے ہیں قدر کے, قدر والی رات؟ ایک معنی تو وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدر و منزلت. ہم کہتے ہیں نا بہت قدر والی چیز ہے یہ, بہت عظمت والی, شان والی. تو ایک تو یہ بڑی شان والی رات ہے, اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا, مبارک رات. اب آپ دیکھیں یہ مہینہ بھی مبارک اور اس میں ایک رات بھی ہے جو مبارک ہے, تو دو برکتیں ساتھ مل گئیں. تو عظمت ہے اس کے اندر, بڑی شان ہے اس کے اندر, کیونکہ جب ہمیں بتا دیا کیا نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تو پھر ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ یہ ہے کیا. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کی برکتیں ہیں کتنی. اور برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر, اتنی خیر, اتنی خیر جو بڑھتی جاتی ہے, بہت زیادہ خیر, اس کو برکت کہتے ہیں. تو یعنی اس رات میں اتنی خیر ہے جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. تو اس رات میں کی گئی عبادت, جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں, وہ ہمارے اندازے سے بھی بڑھ کے ہے اجر میں. پورے سال میں آپ کسی رات میں ایسی عبادتیں کر لیں, مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا مقام نہیں رکھتی ہوں گی جتنی لیلۃ القدر کی عبادت مقام رکھتی ہے. آپ کو پتا چلے نہ چلے کہ کون سی رات ہے, مگر ہر رات میں یہی سوچ کے عبادت کرنی ہے کہ آج ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان میں سے ہی کوئی ہوگی نا. تو یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر پچھتائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ فلاں رات تھی اور اسی رات میں نے اچھی طرح عبادت نہیں کی. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر رات اچھی طرح کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو, تاکہ جو ہماری ہزار مہینوں سے افضل اجر والی رات ہے وہ بیسٹ ہو. تو یہ اس لحاظ سے قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں انا انزلناہو, ہم نے نازل کیا اس کو, کس کو؟ قرآن کو. اس رات میں جو بڑی قدر والی رات ہے, یعنی قرآن پاک کی وجہ سے اس رات کو بھی اتنا بڑا شرف حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چنا اپنا کلام انسانیت کے اوپر نازل کرنے کے لیے, انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے, ان کو راہ دکھانے کے لیے. تو کتنی بڑی قدر و منزلت ہے پھر قرآن کی, کہ اس کی وجہ سے وہ رات بھی کتنی قدر والی ہو گئی. تو قرآن پاک اس رات میں اترا ہے, اور اس سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کلام جس کی وجہ سے کسی رات کو عزت مل جائے, وہ کلام جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو کتنی عزتیں دے گا. اسی لیے اس قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیجئے. آپ اس کو اس زندگی کا ساتھی بنائیں گی نا, یہ آپ کی قبر کا ساتھی بن جائے گا, آپ کے حشر کا ساتھی بن جائے گا, یہاں پہ کوئی اور ساتھ نہیں ہوگا. اور یہ فیکچوئل بات ہے, میں ایسے کوئی وہ اونچی اونچی باتیں نہیں کر رہی کہ جس ڈائیلاگ ہوں, کہ کوئی درس چل رہا ہے تو آپ کو بڑی بڑی باتیں بتائی جائیں اور واہ واہ ہوا یہ, نہیں, یہ فیکچوئل بات ہے, یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی ہے وہ سچ ہے. تو واقعی یہ وہاں جب ہمیں گڑھے میں سب چھوڑ کے آ جائیں گے نا, تو یہ قرآن جو ہم نے آج جس کو ساتھی بنایا ہوگا, ساتھی بنانا سمجھتے ہیں کیا ہے, یہ نہیں کہ صرف رمضان میں اس کو کھولنا, یہ نہیں کہ صرف رمضان میں اس کو پڑھنا, زندگی کا ساتھی بنانا ہے. اس رمضان سے کم از کم یہ ضرور عہد کیجئے کہ قرآن کو میں نے اب نہیں چھوڑنا. آپ جتنی مرضی اور ڈگریاں لیں, کوئی نہیں آپ کو روک رہا, کوئی اور چیزیں پڑھیں, یا چلیں دین کے علم میں بھی حدیث پڑھیں, فقہ پڑھیں, اور جو بھی آپ کو شوق ہے اس میں آپ آگے لائن اختیار کریں, لیکن قرآن کو نہیں چھوڑنا. چاہے 100 دفعہ آپ پڑھ چکے یا آپ رمضان کے رمضان پڑھنے والے ہیں, اس دفعہ عہد کر لیجئے کہ یہ اتنا زبردست کلام, اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی, اور اس जब मैं कदर जानती हूं तो फिर इसको अपने साथ क्यों नहीं रखती रमजान के बाद? क्या चीज है जो मुझे इससे दूर कर देती है? तो इस दफा नहीं दूर करना, इतना अरसा इसके बगैर अगर गुजार दिया तो अब कह दें कि अब नहीं, बस अब ये कुरान पाक को मैं सीखूंगी। इन रातों में किसी ऐसी नेकी का भी इरादा कीजिए जो आप पहले नहीं करते थे या पहले से सोच रहे थे। बहुत अच्छा टाइम है कि आप उसका तहिया कर लें। और इब्ने तैमिया वो हैं जिनकी किताबें आपने देखी होंगी, वो हर जगह कुरान पाक को कोट करते हैं अपनी किताबों में। 6 महीने उन्होंने सूरह नूह की एक आयत की तफसीर बयान करने में गुजार दिए, 5 साल सूरह नूह की तफसीर बयान करते रहे। जब जेल में कैद हुए तो 81 टाइम्स कुरान मुकम्मल किया, और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कहते हैं, मैं अफसोस करता हूं कि मैंने अपनी इतनी जिंदगी कुरान से दूर गुजार दी। ये वो है जो कुरान की खिदमतें करने वाले हैं। तो जिसके जिंदगी में कुरान नहीं होगा ना, वो अपने मरने के वक्त में हसरत करेगा कि पता चल जाएगा ना उस वक्त कि ये ही वो चीज थी जो पार लगाने वाली थी, यही मेरा साथी था, मैंने इसी को छोड़ दिया। तो अपने कब्र के साथी तैयार कीजिए। यहाँ पे दुनिया में किसी की शादी ना हो तो कितना कहते हैं दुआएं करें इसकी शादी हो जाए, इसको साथी मिल जाए। भाई कब्र के साथी का किसी ने कभी सोचा है कि वहां कितनी तन्हाई होगी? वहां पे भी तो साथ चाहिए। तो कुरान को साथी बना लीजिए। हशर के दिन का कभी सोचते हैं, यहाँ पे कोई किसी को ना पूछेगा, वहां पे अगर कुरान मेरा साथी बन जाए और फिर आगे जाके सिफारशी भी बन जाए तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती। तो इंशाअल्लाह ताला इन रातों में इरादा भी करना है और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला इस कुरान का साथ अब मरते दम तक रहे। दूसरी, इस रात को कदर वाली रात क्यों कहा जाता है, जो लैलतुल कदर है, इसलिए कि जो अल्लाह ताला की इबादत करता है इस रात में वो अल्लाह के यहाँ कदर वाला हो जाता है, बुलंद मकाम पा लेता है, उसके दर्जे रेज्ड हो जाते हैं, यानी समझ लें अपग्रेड हो जाता है, उसका प्रमोशन हो जाती है उसकी। ये इतनी अजमत वाली रात है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर ये लैलतुल कदर नहीं भी होती तो तब भी अजर तो है ना, ये रातें वैसे ही सारी की सारी रातें बहुत अजमत वाली है। फिर तीसरा इसका माना है कदर का टाइटनेस, टाइट हो जाना, तंग हो जाना। तो इतने फरिश्ते इस रात में उतरते हैं जमीन के ऊपर, इतने उतरते हैं कि जितने रेत के जर्रे हैं, इतना ट्रैफिक होता है कि उसकी वजह से जमीन तंग पड़ जाती है, यानी टाइट हो जाती है, तंगी आ जाती है जमीन, इतना क्राउड होता है। ये आम फरिश्ते नहीं है, ये सिर्फ इस रात में उतरते हैं बस, और इतने ज्यादा होते हैं तो जमीन जैम पैक्ड हो जाती है, इसलिए कदर इसको कहा गया लैलतुल कदर। और चौथी तफसीर इसकी ये है कि इस रात में कदर का ऐलान कर दिया जाता है, यानी तकदीर के फैसले जो एक साल में होने हैं वो फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। आज ही मुझे पता चला कुछ स्टूडेंट्स जो पिछले चंद माह में अल्लाह ताला के पास चली गई, मैं यही सोच रही थी कि पिछले रमजान में वो हमारे साथ बैठी होंगी, यही हम बातें कर रहे होंगे कि एक साल की जो तकदीर है अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देता है, उनको कहाँ पता होगा कि उस तकदीर में हमारी मौत लिखी होगी, हम अगले रमजान के आखिरी अशरे को नहीं देख पाएंगे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि लैलतुल कदर में लोहे महफूज से सारी चीजों को नकल किया जाता है जो इस साल में होने वाली, यानी आगे फरिश्तों तक डिलीवर कर दिया जाता है ये, कि इतना रिस्क किसी को देना है, फलां फलां मरेगा, फलां फलां पैदा होगा, यानी नए बच्चे पैदा होने का भी बता दिया जाता है, किसी के मरने का भी बता दिया जाता है, इतनी इतनी बारिश होगी ये भी बता दिया जाता है, इस साल फलां फलां ने हज करना है ये भी बता दिया जाता है। तो फिर इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि तू आदमी को देखेगा वो बाजारों में चल फिर रहा है, लेकिन उसका नाम उस साल के मुर्दों में लिखा जा चुका है। तो इस रात में तमाम साल की भलाई बुराई, रोजी बीमारी मौत तकलीफें, जो ये सारी चीजें हैं ना, तमाम ये पूरे साल की वो दे दी जाती हैं फरिश्तों को। हत्ता कि आदमी की शादी किसी की होनी है तो वो शादी का भी इसके अंदर दे दिया जाता है फैसला। उसके अगर बच्चा पैदा होना है तो वो भी इस रमजान में, कोई कमारा बैठा हो सकता है और अगले रमजान में उसकी शादी होकर बच्चा भी हो सकता है, और कोई बैठा हो सकता है उसका नाम मुर्दों में शामिल हो जाता है। तो समझ लें कि एक लिस्ट बननी है आने वाली रूहों की भी और जाने वाली भी। और होना क्या चाहिए कि जब अल्लाह ताला ये फैसले दे रहे हो और हम दुआएं कर रहे हो, इधर इधर हम दुआएं कर रहे हो कि अल्लाह हमारे साथ आफियत का मामला फरमाना है, अल्लाह तो सब खैर रखना है, अल्लाह सबकी सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी रखना, होना ये चाहिए कि हम उस वक्त अल्लाह के आगे गिड़गड़ा रहे हो, हम अल्लाह ताला के आगे रो रहे हो, हम अल्लाह ताला के आगे माफिया मांग रहे हो। ये हमारा आने वाला साल उसके सुपुर्द है, उसके हवाले है, जो चाहे उसमें कमी बेशी करे। तो इसलिए उस वक्त हमारा दुनिया में हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से खैर और भलाई मांग रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबके साथ आफियत का मामला फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे खानदानों समेत हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। उम्मीद है कि आपने इस रात की भी तैयारी की होगी, कि घर को साफ वाफ किया होगा और आने वाले मेहमानों के लिए घर में खुशबू लगाई होगी। मैंने तो मगरिब के बाद अच्छा खूब एयर फ्रेशनर किया, मैंने कहा ये जो इफ्तार के खानों का, आपको पता है एक हमारे खानों की वैसे भी एक स्मेल होती है मसालों की है, और फरिश्ते जो है ना उन वो बदबू से भागते हैं, वो यानी पसंद नहीं करते, इसीलिए कहा गया कच्ची प्याज ना खा के आओ मस्जिद में, लहसुन ना खा के आओ, क्योंकि उनको बदबू पसंद नहीं थी। तो खासुल खास इन रातों में एहतमाम करें कि हम साफ सुथरे कपड़े पहने हों, उसमें से स्मेल ना आ रही हो फ्राइंग की पकौड़ों की इसकी, और ना हम मैले कुचैले हों, ये भी कोशिश होनी चाहिए अगर हो सके तो। खास तौर पे ताक रातों में तो जरूरी कर लें कि आप शाम में गुसल ले लें आप मगरिब से पहले, ताकि साफ शफाफ अच्छे से कंघी करके अच्छे साफ सुथरे होके बैठे, अपने घर में खुशबू लगाइए। घर में कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई बुत नहीं होना चाहिए, चाहे वो डेकोरेशन है चाहे वो किसी सूरत में भी है, घंटियां नहीं होनी चाहिए, कुत्ता नहीं होना चाहिए, वरना फरिश्ते वो नहीं आएंगे। तो देख लें कि उनको आने देना है या फिर इस किस्म की चीजें रखनी है हमने घर में, और उनको हटा दीजिए। ठीक है, एक सहाबी थे जो एक खास लिबास संभाल के रखते थे संदूक में, ये लैलतुल कद्र पे पहनूंगा, तो उनके घर वाले कहते थे कुछ दिन बाद तो ईद आने वाली है आप उस पे पहन लेना, तो कहते थे अभी क्यों ना पहनूं, जब जिब्राईल अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे उस वक्त क्यों ना मैं ये लिबास पहने में हूं, क्या मैं उनके लिए तमाम ना करूं कि वो आए और देखें तो मैं अच्छा लगूं। इसी तरह एक ताबेई थे जो इंतहाई कीमती खुशबू संभाल के रखते थे और उसको तब इस्तेमाल करते थे जब रमजान की ये रातें होती थी, ताकि हर तरफ खुशबू हो। तो ये सल्फ का तरीका था, वो सोचते थे इस तरह से कि फरिश्तों ने आना है और वो हमें देखेंगे तो हमें बेस्ट हुलिये में देखें, बेस्ट कपड़ों में देखें, खुशबुएं लगी हों, हम कयाम में खड़े हों, हम जिक्र में लगे हुए हों, हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों, ताकि वो हमारे लिए दुआएं करें। फिर वो ऐसे फरिश्ते जब आते हैं तो वो दुआएं मगफिरत करते हैं उस इंसान के लिए जो बैठा हुआ इबादत कर रहा है, वरना कौन सी चीज है कि जो हमें रोक रही है बिस्तरों में जाने से? नींद तो सबको आती है, इंसान है तो, लेकिन एक बंदा है वो अपनी नींद की कुर्बानी देके बैठा हुआ है। आप देखें पूरा दिन बंदा खाने और पीने की कुर्बानी देता है, फजर से लेके मगरिब तक आप रोजे से होते हैं और मगरिब से लेके फजर तक आप इबादत में बैठे हैं। ये वो दिन है जो 24 आवर आप इबादत में है, इसलिए क्योंकि जब आप रोजे में होते हैं तो वो इटसेल्फ एक इबादत है। चाहे आप सो भी रहे हैं तो आप इबादत में हैं, चाहे कोई घर के काम वाम भी कर रहे हैं तो आप इबादत में हैं, क्योंकि रोजा आपका चल रहा है, उसके जितना ड्यूरेशन है वो इबादत में ही काउंट हो रहा है। फिर मगरिब से जब फजर तक आप इबादत कर रहे हैं, फिर भी नफल पढ़ रहे हैं, अभी कुरान पढ़ रहे हैं, वो तो वो सारा भी आपका इबादत में गुजर है। आप जागे ही इस मकसद के लिए हुए कि इबादत करें। तो इसमें दिन और रात इबादत वाली हैं। तो अब जब वो फरिश्ते आते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ होते हैं, तो ये फरिश्ते फिर ऐसे बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। सोच लें कि कितनी बड़ी बात है कि फरिश्तों से हम दुआएं लें और उनकी दुआएं कैसे रद्द हो सकती हैं। तो इसलिए इन रातों का एहतमाम करना है, एहतमाम, इन रातों को मामूली नहीं जानना, इनको वेस्ट नहीं करना। ठीक है, एक हदीस आपको सुना देती हूँ फिर आगे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा अल्लाह की रजा हासिल करना चाहता है और इसमें मुसलसल लगा रहता है, तो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है। अब देखिए आप ये बात, एक बंदा है ना, वो भाग दौड़ में लगा हुआ है, बस लगा हुआ है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा फलां बंदा मुझे राजी करने की कोशिश में लगा हुआ है, तू गवाह रह कि मैंने उस पर मेरी रहमत है, मैंने उस पर अपनी रहमत लाजिम कर दी। यानी एक बंदा कोशिश कर रहा है, बस अभी उसकी कोशिश ही है, तो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गवाह बना के ये फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल करे जिनके लिए अल्लाह ताला ऐलान कर दे कि इसके लिए मेरी रहमत है। इंशाअल्लाह ताला अब चलते हैं हम आज के अल्लाह ताला के प्यारे नाम की तरफ।